इशिका और अभिमन्यु की मेहनत रंग लाई थी। वे दोनों जिस मकसद से उस विला पहुंचे थे वो कामयाब होने वाला था। उन्होंने राधिका को वहां से बचा लिया था। इन सब में दिशांक, पृथ्वी और केशव सिंघानिया ने भी उनका बखूबी साथ निभाया था। इशिका और अभिमन्यु श्रुति और राधिका को लेकर विला से बाहर निकल चुके थे। उनके पास आते ही जब वे लोग वहां से निकलने को हुए तभी अर्पित ने उन्हें देख लिया था। अर्पित गौतम मर्चेंट की ही छवि था। उसके लिए अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था। अपने गुस्से में अर्पित ने अभिमन्यु की तरफ शूट कर दिया था। गोली लगते ही वहां चिल्लाने की तेज आवाज आई। अभिमन्यु अपने घुटनों के बल गिरा हुआ था। वो गोली उसके कंधे से थोड़ा नीचे लगी थी। अभिमन्यु के गोली लगते ही इशिका जोर से चिल्लाई और जल्दी से उसे संभालने लगी। उसने तेज आवाज में दिशांक से कहा, दिशांक प्लीज डू समथिंग, अभिमन्यु अभिमन्यु प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे। इशिका अभिमन्यु को संभालने लगी। अभिमन्यु की आंखों के सामने अंधेरा जा रहा था, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। दर्द के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं अभिमन्यु के गोली लगते ही केशव ने अपने आदमियों को अलर्ट किया और उन्होंने चॉपर को गन पॉइंट पर ले लिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अर्पित ने हार नहीं मानी थी। इस बार उसका निशाना इशिका थी। आदित्य ने अर्पित को पीछे से पकड़ लिया था। वो उस पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, पागल हो गए हो तुम, हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है। अब तो समझ जाओ हमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम भी डैड की तरह हैवान बन गए हो। हैवान हूँ तो हैवान ही सही, लेकिन जिसने मेरा सब कुछ छीना है उसे मैं यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जाने दूंगा, अर्पित ने गुस्से में कहा और आदित्य को पीछे की तरफ धकेल दिया था। आदित्य ने खुद को संभाला। अर्पित ने अभिमन्यु को शूट करके एक बार पागलपन कर दिया था। वो उसे फिर से गलती करने नहीं दे सकता था। आदित्य अर्पित की तरफ बढ़ते हुए बोला, उन्होंने हमसे कुछ नहीं छीना है, उल्टा हम उनकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण हम खुद हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। हाँ सही कहा तुमने, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर थोड़ी सी भी देर की तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, अर्पित ने जवाब दिया। उसने इशिका की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया था। वहीं केशव के आदमी भी हरकत में आ गए थे। उन्होंने अर्पित को अपने निशाने पर ले लिया था, पर अर्पित ऊपर से चॉपर में होने की वजह से वे डायरेक्ट शूट नहीं कर पा रहे थे। आदित्य एक बार फिर अर्पित को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अर्पित ने उसकी तरफ पलटकर सख्त आवाज में कहा, अगर एक और बार तुम मेरे रास्ते में आए तो उनसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा। अगर हमारी फैमिली में से किसी की जान गई है तो वो तुम्हारी वजह से गई है। एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप तुम करते हो। तुम्हारे फेल होने की वजह से हमने हमारे फैमिली मेंबर को होया है, तो इसके लिए हमें ब्लेम करना बंद करो। आई वॉन्ट यू टू नॉट टेक अ सिंगल स्टेप टुवर्ड्स मी। इतना कहकर अर्पित फिर से उनकी तरफ पलट गया था। वहीं आदित्य उसके पीछे ही खड़ा था। आदित्य ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, शायद मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आदित्य धीमे कदमों से अर्पित की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि किसी और मासूम का खून बहता, आदित्य ने अर्पित को नीचे धकेल दिया था। उनका चॉपर अच्छी खासी ऊंचाई पर था। ऊपर से आदित्य ने जिस तरह से अर्पित को धकेला था वो सीधा सर के बल नीचे गिरा। नीचे गिरते ही अर्पित का सिर फटकर जमीन पर बिखर गया था। चारों तरफ खून फैला हुआ था। आदित्य का यह कदम देखकर राधिका और बाकी लोग भी दंग रह गए। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य ने पायलट को चॉपर थोड़ा नीचे लेने के लिए कहा। थोड़ा नीचे आने पर आदित्य ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ की सिचुएशन देखता हूँ, तुम लोग जल्द से जल्द अभिमन्यु को हॉस्पिटल लेकर पहुंचो। दिशांक और पृथ्वी ने अभिमन्यु को अपने कंधे का सहारा दिया और उसे चॉपर के अंदर लेकर पहुंचे। वे भी उनके साथ आना चाहते थे, लेकिन इशिका ने कहा, तुम दोनों अगर हमारे साथ आओगे तो यहाँ मिस्टर सिंघानिया अकेले सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मिस्टर गौतम मर्चेंट यहाँ से कहीं भाग जाए। रही बात अभिमन्यु की तो हम उन्हें संभाल लेंगे। वैसे हमें इस तरह की सिचुएशन का पहले ही अंदाजा था, तो हम डॉक्टर को साथ लेकर आए थे, वो फर्स्ट एड कर देगा, दिशांक ने जवाब दिया। फिर भी अकेले जाने से बेहतर है कि आप मिस्टर सिंघानिया को अपने साथ लेकर जाइए, और डोंट वरी वील हैंडल एवरीथिंग, पृथ्वी ने कहा। उस वक्त बहस करने या सोच समझकर डिसीजन लेने जितना टाइम नहीं था। यह सोचकर इशिका ने केशव सिंघानिया को अपने साथ आने दिया। अंदर डॉक्टर ने अभिमन्यु का फर्स्ट एड तो कर दिया था, लेकिन गोली बाहर निकालनी भी जरूरी थी। चॉपर अपनी उड़ान भर चुका था और उन्हें जल्द से जल्द पास किसी कंट्री में पहुंचकर वहां अभिमन्यु का ट्रीटमेंट शुरू करवाना था। अगर वे किसी जानी पहचानी कंट्री या इंडिया में होते तो अब तक अभिमन्यु के इलाज के लिए पहले ही सारी तैयारी करवा चुके होते, पर अनजान देश में उनके लिए सब कुछ मुश्किल होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ उस आइलैंड पर दिशांक और पृथ्वी अभी भी उन सबसे निपटने में लगे हुए थे। आदित्य चॉपर से बाहर आ गया था और वो गौतम को ढूंढ रहा था। गौतम इस वक्त विला में एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां से उन्हें सब दिखाई दे रहा था। जब आदित्य ने अर्पित को धक्का दिया तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। मुझे पहले ही शक था कि बहन के प्यार के आगे तुम्हारे लिए सब कुछ फीका पड़ जाएगा आदित्य, पर यह नहीं सोचा था कि तुम अपने हाथों से अपने ही भाई की जान ले लोगे। इस लड़की ने सब खत्म कर दिया, इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, गौतम ने जलती निगाहों के साथ कहा। उन्होंने एक नजर अपने विला और बाहर की तरफ देखा। गौतम की आंखें नम होने लगी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, सोचा नहीं था यूं अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन तुमने सीधा मेरे दिल पर वार किया है इशिका, और इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। जाने से पहले गौतम ने अपने विला तो कुछ पल के लिए देखा, आखिर उन्होंने इतने साल वहां बिताए थे। परिवार के नाम पर उनके पास सिर्फ उनके दो बेटे बच्चे थे, जिनसे भी वो ठीक से बात नहीं करते थे। उन्होंने अपना पूरा वक्त इस एक्सपेरिमेंट को दिया था, उनकी दुनिया वही थी, और आज अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखना उनके लिए मुश्किल था। लगभग 5 मिनट बाद गौतम मर्चेंट ने किसी को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, मेरे लिए अलग से चॉपर तैयार करो, प्लान बी भी अभी भी एक्टिव है, मेरे यहां से निकलते ही पूरा एरिया तहस नहस कर देना, फिर चाहे यहां पर कितने भी लोग मौजूद क्यों ना हो। गौतम वहां से निकलने की पूरी तैयारी में था। इस बीच पृथ्वी और दिशांक अंदर की तरफ जाकर गौतम को ढूंढने का सोच रहे थे। ऐसे में उनके आदमियों ने मर्चेंट फैमिली की आर्मी को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। जो लोग लड़ रहे थे उन्हें भी आदित्य ने शांत करवा दिया था। जैसे ही वे अंदर जाने को हुए, आदित्य ने कहा, मुझे नहीं पता इस वक्त डैड कहां पर है, वे इशिका को ढूंढने के लिए निकले थे तो उन्हें यहां जो भी हो रहा है उसके बारे में पता होगा। तुम लोगों को जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्लान बी भी एक्टिव हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा। कैसा प्लान बी, पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। आदित्य ने उसके बाद उसे प्लान बी के बारे में बता दिया कि कैसे उन्होंने सिक्योरिटी के लिए अपने प्लान बनाए थे। उन्हें हर वक्त यही डर सताता था कि अगर उनके बिना पर हमला हो गया तो वे कैसे बाहर निकलेंगे। उनके प्लान बी के तहत वे सुरक्षित वहां से बाहर निकल भी सकते थे, और उनके जाने के बाद वो एरिया भी तबाह होने वाला था, ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। कुछ जानने के बाद दिशांक बोला, ये सही कह रहे हैं, अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप ही हमारे साथ चलिए, पृथ्वी ने आदित्य से कहा।
आदित्य ने नामे सर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे डैड से बात करनी होगी, वो बहुत गुस्से में हैं और अपने गुस्से में वो कुछ नहीं सोचते हैं। आप लोग यहां से निकल गए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। दिशांक और पृथ्वी ने उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। उनकी जगह शायद राधिका होती तो आदित्य की मदद के बाद उसे वहां से लिए बिना नहीं निकलती। दिशांक और पृथ्वी ने 10 मिनट में अपने सभी आदमियों को सेफ्टी के साथ बिठा दिया था। वो लोग वहां से निकलने लगे। आदित्य उन्हें जाते हुए देख रहा था। जब वे थोड़ी दूर निकल गए तो आदित्य गौतम को ढूंढते हुए अंदर जा रहा था। तभी उसे एक और चॉपर उड़ने की आवाज़ आई। अरे नहीं, अगर डैड यहां से निकल गए तो वे लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे, आदित्य ने कहा। वो जल्दी से दौड़ते हुए लैब की तरफ जा रहा था। वहीं गौतम अपने चेहरे पर विजयी मुस्कुराहट लिए उस जगह को अलविदा कह रहा था। आदित्य इस बात से बेखबर था कि गौतम पहले ही प्लान बी एक्टिवेट करवा चुके थे, और अगले 5 मिनट में वे तो वहां से निकलने वाले थे, और वो जगह पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है, आदित्य मर जाएगा और गौतम वहां से निकलकर फिर से उनकी जिंदगी में हलचल मचाएंगे? चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और रेटिंग भी दे दीजिएगा।